ओम शांति। आज हमारे बीच भट्टी में खास ज्ञान सरोवर से मोहन भाई सिंगल पधारे हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मोहन भाई बाबा के पुराने रत्न है। करीब 1962 से बाबा के ज्ञान में चलना शुरू किया। ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग पास करके ONGC में लौकिक रीति से आप सर्विस करते थे। अनेक स्थानों पर सेवा करते करते मैं समझती हूँ लास्ट में गुजरात में ONGC में सेवा से वॉलेंटरी रिटायरमेंट ली। और जब से ज्ञान सरोवर बनना शुरू हुआ लगभग 92 में, तो बनाने का था तभी से ही आना जाना करते हुए उसमें भी सहयोगी रहे। और 94 से तो जब बन गया तो आपने भी अपनी रिटायरमेंट ले ली और बाबा के कार्य में सेवा में पूर्ण रीति से समर्पित हो चुके। ऐसे भी सेंटर पर रहते थे, सेवाएं तो करते थे, गुजरात में भी आपने बहुत सेवाएं की। शायद सबको मालूम होगा कि कई प्रकार के मेले और बाद में भी यहाँ आने के बाद भी जो बड़े मेले हुए, 1,00,000 लोगों का इकट्ठा होना, ये सब जो मेगा प्रोग्राम्स जो भी हुए उसमें आपका विशेष योगदान रहा। प्लानिंग बुद्धि है, इन्वेंटर बुद्धि है आपके, हमेशा मीटिंग में गुजरात में आपको अभी तक भी बुलाते रहते हैं। भले यहाँ सेवा करते लेकिन फिर भी आपकी सेवा इतनी, सेवा करने की प्लानिंग या जो भी विचार देते थे बहुत अच्छे थे और प्रैक्टिकल में भी आप सहयोगी रहते थे। तो अभी ज्ञान सरोवर में एकेडमी संभालते हैं और वहाँ जो भी हमारी 18 विंग का कोऑर्डिनेशन आप करते हो, क्योंकि हर विंग जैसे कोई भी विंग का एक फॉर्मेट बना हुआ होता, लेकिन उन सबको वो अप्लाई करना, सबको देना, सबको गाइड करना और आने वाले सभी आगंतुक जो भी होते उनों को ज्ञान सरोवर के बारे में परिचय देना आदि आदि, बहुत अच्छी तरह से आप वहाँ भी वाचा सेवा भी करते, सारा कारोबार भी संभालते हो। और साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हो और उस विंग के अंतर्गत पर्यावरण के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छी सेवाएं की है, अभियान भी निकाले हैं कई प्रकार की सेवाओं करने के बाद, डिजास्टर मैनेजमेंट आदि भी आप कर रहे थे। आपको 3 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं, पहली से नवाजित करेंगे। और विदेश सेवाएं भी आपने यूरोप, USA, रशिया आदि की सेवाएं भी की है जाकर के, वहां भी अभी भी शायद कहां जाने वाले हैं, कहां
कैरेबियन कंट्रीज
में अभी भी आप जाने की तैयारी कर ही रहे हैं, आपको वहां भी जाकर सेवा देनी है। और विंग्स तो अभी बने, उसके पहले विंग्स नहीं थी फिर भी सेवाएं तो होती थी, तो आपने 6-7 प्रदर्शनी का भी निर्माण किया। यूथ प्रदर्शनी, इंजीनियरिंग की, साइंटिस्ट विंग की प्रदर्शनी है, बाल व्यक्तित्व विकास है, ऐसे कई प्रकार के ग्राम विकास है, प्रदर्शनियां बनाने में आपका विशेष सहयोग रहा है। मीन्स आप ऑलराउंडर सेवाधारी हो और बाबा के ऐसे विविध प्रकार की विशेषताओं से संपन्न आत्मा होने के कारण आपको इस यज्ञ में भी एकेडमी बनी, तब से पूर्ण रीति से सेवा में समर्पित होकर कई कॉन्फ्रेंसेस आदि में भी देश विदेश में भी भाग लिया। यहाँ भी होती रहती है कॉन्फ्रेंसेस, उसमें भी आपका विशेष रोल होता है। तो ऐसी भट्टियां कराने में भी आप क्लासेस कराते हो, तो कई प्रकार की सेवाओं में आप व्यस्त रहते हो। तो आप ऐसे कई प्रकार की विशेषताओं से संपन्न
आत्मा होने के कारण आप बहुत बहुत अथक बनकर सेवा भी करते हो, हमेशा तैयार भी एवर रेडी रहते हैं और बाबा की सेवा यज्ञ सेवा में भी पूर्ण रीति से समर्पित है। हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और आप अभी हमें मन जीत जगत जीत ऐसे विषय पर क्लास कराएंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे। ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति, ओम आनंद, ओम पवित्रता, ओम प्रेम, ओम सुख, ओम ज्ञान, ओम शक्ति। आपको ये सब सुनकर थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन हमारी जानकी दादी जी हमेशा यही कहते हैं कि ओम शांति तो हम निमित्त बोला करते हैं जब भी आपस में मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर आत्मा के सातों गुण समाये होते हैं। अतः बीच बीच में हम सबको ये भी जरूर बोलना चाहिए कि जैसा आज बोला, आत्मा के बाकी छह गुण जो हैं वो भी हमारी स्मृति में तुरंत आ जाए, मन को हम ऐसा ट्रेन कर लें कि ओम शांति बोलने के साथ साथ ये बाकी जो छह गुण भी हैं, कुल सातों गुण आत्मा के, वो तुरंत स्मृति में आ जाए और हम उसका स्वरूप बन जाए। तो दादी जानकी जी कई बार इस तरीके से बुलवाते हैं और जब भी हम लोग ये बोलते हैं ओम शांति, तो स्वतः ही शांति में तो स्थित होने का प्रयास करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा मन है और जो आज का विषय है, मन जीते जगत जी, ये विषय बहुत बहुत गहन है, क्योंकि साकार ब्रह्मा बाबा ने भी ये अनुभव किया जब 1937 में बाबा को भी दिव्य साक्षात्कार हुए। हम सब जानते हैं, जीवन कहानी में पढ़ा है, बाबा को जो साक्षात्कार हुए उसने बाबा का जीवन ही पूरा बदल दिया और बाबा का यही प्रयास शुरू हो गया कि किस तरीके से अब मुझे नई दुनिया बनानी है, क्योंकि एक साक्षात्कार में बाबा को ये आवाज सुनाई दिया था, याद है ना, ऊपर से स्टार आ रहे हैं, कोई राजकुमार बन रहे हैं, कोई राजकुमारी बन रहे हैं, बहुत नई सुहानी दुनिया है स्वर्ग की और चारों तरफ खुशी हरियाली सब फैली हुई है, और बाबा उसको देखने में तल्लीन थे। तभी बाबा के कानों में आवाज सुनाई दी, क्या तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। और बस बाबा जब ध्यान से नीचे उतरे तो देखा और कहा, ये आवाज किसकी आवाज थी, कौन कह रहा था, मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा। और बस बाबा उसी मंथन में डूब गए और तब से ही बाबा का नया जीवन जैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहले बाबा ने ये रियलाइज किया कि ये जो मन है, मन बहुत भाग जाता है, क्योंकि बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है। अभी तक एक वो ही आत्मा है जो संपूर्ण कर्मातीत बनी है और हम बच्चों को भी बनाने के लिए अव्यक्त रूप में पुरुषार्थी है। हमें भी ये सौभाग्य मिला बाबा के साथ साथ लगभग 6-7 साल रहने का और बाबा को निकट से बहुत देखने का। जीवन कहानी में भी ऐसा सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो एक तो बाबा का ये पुरुषार्थ, क्योंकि बाबा योग लगाने बैठते थे, बाबा का मन भाग जाता था, क्योंकि बाबा भी प्रवृत्ति वाले थे। आज की मुरली भी थी ना, क्या था मुरली का मुख्य सार? हाँ, प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस, जैसे कि मुख्य सार था। तो बाबा प्रवृत्ति में रहते थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, पत्नी थी, 5 पुत्र पुत्रियां थी और इस बहुएं थी आदि आदि, तो सारा परिवार भी था। तो स्वाभाविक रीति से जैसे होता है, ज्ञान तो हो गया लेकिन जब भी ध्यान लगाने बैठते थे मन भाग जाता था, कभी धंधे में, कभी पत्नी में, कभी बच्चों में, कभी संबंधियों में, व्यवसाय में आदि आदि, जहां पर भी व्यक्ति का वो होता है, बुद्धि होती है, लगाव होता है। तो बाबा ने मन को जीतने का क्या पुरुषार्थ किया, क्योंकि जो जो बाबा ने किया हम वो करते चलेंगे तो बाबा की तरह हम भी संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा कितने साल में संपूर्ण बन गया? कितने वर्ष में? सिर्फ 33 वर्ष में। देखो, प्रवृत्ति में भी उल्टी सीढ़ी चढ़ा हुआ प्रवृत्ति का, और पुराने 63 जन्मों के सारे हिसाब किताब बाबा ने सब चुकतू करके सिर्फ 33 वर्षों में ही बाबा संपूर्ण, 1937 में ज्ञान हुआ, 1969 में तो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो गया। हो सकता है इसमें भी हो काफी, लेकिन यहाँ तो हम ही बैठे हैं जिन्हें 50 साल से ज्यादा हो गए, उस मार्ग के राही हैं, लेकिन बाबा तो 33 वर्षों में ही हो गया। तो हम भी कैसे जल्दी से जल्दी मन जीतकर जगत जीत बन जाएं, उस बात पर और हम कुछ विचार करेंगे आज। तो बाबा ने जब देखा मन चारों तरफ भाग जाता है, तो बाबा ने क्या पहला पुरुषार्थ किया? सबसे पहले बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या पत्र? उस पत्र की कॉपी हम लोगों को, जो सीनियर पुराने भाई बहन थे, बाबा ने सिंधी में पत्र लिखा था, उसकी कॉपी हम लोगों को दी गई थी हिंदी में करके। और बड़ा विचित्र, भला कोई मन को पत्र, हाँ इतना सूक्ष्म कैसे मन को पत्र लिखा? लेकिन बाबा ने लिखा। क्या लिखा, गौर से सुनना। हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन फिर भी तू ज्यादा बलशाली हो गया और मुझ आत्मा राजा को तूने कमजोर कर दिया, और तू इतना शक्तिशाली हो गया कि तू जहां जहां चलता रहा, भागता रहा, मैं आत्मा राजा होते हुए भी तुझ मंत्री के पीछे पीछे मैं भी भागता रहा, और तूने मुझे बहुत कमजोर कर दिया। लेकिन हे मन, दूसरा पैरा में बाबा लिखा, अब मैं तुझे कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपनी स्व स्थिति में स्थित हो रहा हूं, हो गया हूं, और स्वस्थिति के सिंहासन पर मैं विराजमान हूं। अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं और तू मेरा मंत्री है, तो मंत्री को राजा के कहने पर चलना होता है। तो इस तरह बाबा ने मन को निर्देश दिया। भक्ति मार्ग में क्या कहते आए, बाबा भी वही कह देते थे, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, क्या करे, चाहते हैं मन को पकड़ना, लेकिन मन बड़ा शक्तिशाली है, चंचल है, और कहां भाग जाता है पता नहीं चलता। तो भक्ति मार्ग में बाबा भी वो कहते थे, लेकिन जब बाबा को ये ज्ञान हुआ, उसके बाद बाबा ने पहली युक्ति ये रची, और इसी के साथ बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा। हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर, मन के साथ साथ चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को बहुत कमजोर कर दिया। और मैं जिधर तुम दोनों कहते थे मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा, भागता रहा। लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूँ हे बुद्धि, कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, मेरे नियंत्रण में रहना होगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ, तू बुद्धि मेरी सेनापति है, मन मंत्री, बुद्धि सेनापति और संस्कार सैनिक। तो सब संस्कार सैनिक हैं, बुद्धि सेनापति और मन मंत्री। इन सब को राजा के कहने पर चलना होता है, राजा के नियंत्रण पर। तो इसीलिए बाबा ने सबसे पहला काम ये किया। और ये कहने से पहले, ऑर्डर करने से पहले बाबा ने क्या किया? पहले अपनी स्वस्थिति के सिंहासन पर सेट हुए। जो अपनी सीट पर सेट नहीं होगा उसका कहना कोई नहीं मानता। आज हाँ मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, कोई नहीं कहना मानेगा। जब थे तब उनका कहना मानते थे। तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी होता है, बड़ा ऑफिसर है, कलेक्टर है, चाहे कोई भी मिनिस्टर है, लेकिन जब अपनी सीट पर है सब उसका कहना मानेंगे। और जब उसका कोई ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गया, दूसरी जगह चला गया, फिर उसका कहना कोई नहीं मानेगा। ऐसे हम चाहते तो हैं कि मन हमारा कहना माने, मन को हम जीतें, लेकिन हम चाहते हैं, लेकिन हम स्वस्थिति की सीट पर सेट होके उसे ऑर्डर नहीं करते, इसलिए वो हमारा कहना नहीं मानता। हमारे मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, मानो किसी ने हमारा अपमान कर दिया, बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। हम चाहते हैं व्यर्थ संकल्प चलना बंद हो जाए, नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम चाहते तो हैं, लेकिन स्वस्थिति की सीट पर सेट होके हमने मन को ऑर्डर नहीं किया, उस शक्ति को ऑर्डर नहीं किया। तो पहले हम अपनी स्वस्थिति की सीट पर हैं, जो बाबा ने हमें इतने स्वस्थिति के मंत्र दिए हैं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विजयी रत्न हूं, मैं आत्मा कलप पहले वाली माला का मणका हूं, मैं आत्मा बाबा की भ्रकुटी के सिंहासन पर, बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं, मैं आत्मा बाबा के नैनों का नूर हूं। अपने को हम उस हाई स्टेज पर ले जाएं, और उस हाई स्टेज पर रह के फिर हम मानो जो शक्ति की आवश्यकता है, समेटने की शक्ति की आवश्यकता है, समाने की शक्ति की जिस समय आवश्यकता है, सहन शक्ति की आवश्यकता है, उस समय हम फिर उस शक्ति को जब ऑर्डर करेंगे तो वो शक्ति तुरंत जैसे कि दौड़ी दौड़ी हमारे पास आएगी, हमारा कहना मानेंगे। और आप देखोगे कि मन जो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा है तुरंत ही एकदम कंट्रोल में। इसीलिए बाबा कहता है रोज अपने मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाओ। ये दरबार लगाना ही हुआ उनको, रोज रात को सोने से पहले दरबार लगाए, उनको ऑर्डर करें, आज हे मन तुमने इन जगह तो मेरा कहना माना, इस जगह तुमने मेरा कहना नहीं माना, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कल तुम ऐसी गलती नहीं करना, कल तुम्हें मेरा पूरा कहना मानना है। तो मन को बाबा ने इस तरीके से किया तो बस मन सहज ही बाबा के कंट्रोल हो गया। इसीलिए बाबा ने आज जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, शायद बाबा को ना आज मुरली भी बाबा की कैसी चली, आप सब बाबा के सामने ही हो गए, हाँ प्रवृत्ति वाले ही है ना ज्यादातर, तो बस बाबा देख रहा था अपना। और इसीलिए बाबा ने प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस, देखो जहाँ बैलेंस होता है ना वहाँ क्या होता है, सफलता होती है। आज बाबा ने कहा खुशी होती है, आनंद होता है, शक्ति होती है। लौकिक में भी बैलेंस कहाँ होता है, बैंक में बैलेंस होता है ना, बैंक में पैसा अगर जमा होगा तो बस आदमी थोड़ा निसंकल्प रहेगा कि आवश्यकता पड़ने पर चलो उसे निकाल लेंगे, उसके द्वारा कोई परिस्थिति आई उसे पार कर लेंगे। घर में शादी है, लड़की की है, बच्चे को पढ़ाना है, मकान बनाना है, बैलेंस अगर है तो निकाल लें। ऐसे ही ये सब बैलेंस होते हैं, ये हमें निसंकल्प कर देते हैं। कौन कौन से बैलेंस बाबा ने बताए हैं? आज तो बताया प्रवृत्ति निवृत्ति का बैलेंस, और कौन सा है? याद और सेवा का बैलेंस। और देखो जीवन में ना जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक बैलेंस हैं, वो एक है बाबा ने बिजी और इजी का बैलेंस। बिजी भी रहो लेकिन साथ साथ इजी रहो, व्यस्त रहना है, क्योंकि अंग्रेजी में भी कहा जाता है वेकेंट माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो खाली नहीं, दुनिया तो कह देती है योग माने कोई संकल्प नहीं, खाली दिमाग, संकल्प ना आए, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम ये रखेंगे संकल्प ना आए, संकल्प ना आए, तो ये भी संकल्प ही है। और हाँ, उन संकल्पों की हम दिशा बदल सकते हैं, जो व्यर्थ संकल्प है, कमजोर है, निगेटिव संकल्प है, उनकी दिशा बदल करके हम सकारात्मक चिंतन कर सकते हैं। तो बिजी के साथ माइंड को भी बिजी रखें, देह तो बिजी अगर है, माइंड भी बिजी, लेकिन साथ साथ इजी रहे, काम का तनाव ना हो, उसकी चिंता ना हो। एक ये, दूसरा और क्या, अलर्ट और रिलैक्स का बैलेंस। अलर्ट, सावधान भी रहें और रिलैक्स, बस बिल्कुल इजी, जैसे बताया ना, एकदम मन और तन दोनों रिलैक्स रहे। आज दुनिया रिलैक्सेशन के लिए आज बहुत कितना कार्य करती है, और आज एक विशेष दिन भी है। कौन सा दिन है? आज वर्ल्ड में, दुनिया में ना, एक मनाया जा रहा है वर्ल्ड लाफ्टर डे, हंसी का दिन, खुशी का दिन। देखो आज खुशी का कितना अभाव हो गया कि 365 में से एक दिन मनाना पड़ता है कि उस दिन खुश रहो। बाबा ने कितना हमें सहज कर दिया, जीवन में सदा ही 365 दिन ही खुश रहो। वो दुनिया में चूंकि वो नहीं होता है, इसीलिए बच्चा, छोटा बच्चा होता है, देखो अक्सर करके खाली भी पड़ा है, मुस्कुराता रहेगा, कोई पुरानी बातें, छोटा बच्चा है, ऑर्गन छोटे हैं, बोल तो सकता नहीं, लेकिन पुरानी बातें जो आत्मा संस्कार लेके आई है उनको सोच के अक्सर खुश होता रहता है। डॉक्टरों का, मनोवैज्ञानिकों का अनुमान है, और इसका उन्होंने जो अध्ययन किया, रिसर्च किया है, एक छोटा बच्चा कितनी बार मुस्कुराता है? कम से कम 300 बार मुस्कुराता है एक दिन भर में, 300 times। हम अपने से पूछें, हम कितनी बार मुस्कुराते हैं, कितनी बार मुस्कुराते हैं? मुस्कुराने के लिए भी कुछ लाना पड़ता है तो मुस्कुराहट आ जाती है ना। तो बाबा कहता है इसीलिए ज्ञान के मनन चिंतन में रहो, ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट रहेगी। खुशी, जिसको सम्मान करते हैं ना, उसका चेहरे पर मुस्कान आती है, जिसको के प्रति हमारे मन में रिगार्ड होता है, रिस्पेक्ट होता है, मिलते हैं, खुशी आ जाती है। इसीलिए फूल जो है ना, सम्मान का प्रतीक है, किसी ने इसीलिए कहा है, और उस बात का बड़ा सार है गहरे का। और सुना होगा आपने कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। देखो गीता का सार आ गया कि जीत हार, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, ये तो जीवन के पहलू हैं अलग अलग, ये तो आएंगे ही, प्रकृति का नियम है, समय परिवर्तनशील है। तो इसीलिए, लेकिन हर परिस्थिति में हमारी मानसिक स्थिति समान रहे, और वही बाबा हमें करा रहा है। और मानसिक स्थिति समान रखना, यही है मन जीते जगत जीत। जितना वो चेंज हो जाए परिस्थितियां, वातावरण, कोई भी परीक्षा, लेकिन मन की स्थिति समान रहे। एक तो हम ये करें जो बाबा ने कहा, रोज दरबार जरूर लगाएं, मन को ऑर्डर करें, मन बुद्धि उसको। और इसीलिए और बैलेंस क्या क्या है, क्योंकि ये जितना बैलेंस रहेंगे उतना उतना मन के अंदर रिलैक्सेशन रहेगा और मन को हम जीतते जाएंगे। तो अलर्ट एंड एक्टिव, ये है रिलैक्स, बिजी एंड इजी, एक है चीयरफुल एंड केयरफुल, खुश भी रहें चीयरफुल लेकिन सावधान केयरफुल, ये भी बहुत आवश्यक है। केयरफुल नहीं रहते कई बार अलबेलेपन में, दुनिया वाले तो कोई धोखा दे दें चाहे, वो तो कोई बात नहीं है, दुनिया ही खराब है, लेकिन हमारा मन भी हमें धोखा दे देता है। माया के ऐसे रूप आते हैं, माया का मानो कोई काम का रूप आया, क्रोध का आया, अहंकार को पता चल जाता है, लेकिन माया के रॉयल रूप जो है ना, उसे पहचान न पहचानने के कारण कई बार मन जीते की बजाय मन से हार जाते हैं। इसीलिए ही कहा है मन के लिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और गीता में भी क्या कह दिया है, मन मना भव, मन मेरे में लगा। और इस कारण से ये मन का ही सारा खेल है, पूरा का पूरा जितना हमारा पुरुषार्थ है वो मन को जीतने का ही है, और इसी के आधार पर ही अंत मते सोगति होती है। मति किसकी, मन की मति, कह देते ना क्या मेरी मति मारी गई थी, ये क्या किया, कोई भी ऐसी बात हो जाती है हम जहां हार जाते हैं तो मन को ही दोष देते हैं, मति को ही दोष देते हैं। इसीलिए ये सारा खेल जो है मन का है, और इसीलिए बाबा ने कहा लव एंड लॉ का बैलेंस, एक ये बैलेंस की जरूरत है कि जहां प्रेम भी रखो, आत्मा ही प्रेम स्वरूप है, ये भी आवश्यक है जीवन में, लेकिन उसके साथ साथ अनुशासन भी रहे और लॉ नियम, जितना ये दोनों का बैलेंस रहेगा जीवन में और मन जीते जगत जीत बनते जाएंगे। बाबा को देखा लव, ये सारे बैलेंस साकार बाबा में थे। इतना बड़ा यज्ञ था, यज्ञ वालों से भूल हो जाती थी, गलती हो जाती थी, क्या करते थे बाबा। अक्सर होता क्या है, हमारे साथ जो काम करते हैं हमारे नीचे कोई गलती हुई, बस हम एकदम आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में डांट देते हैं उसे। लेकिन उस समय उसकी बेचारे की स्थिति यह है, उसने गलती की, और मतलब वो लोअर लेवल पर मेंटल स्ट्रेचर है उसका, बहुत स्वीकार नहीं कर सकता, इसीलिए वो भी निराश हो जाता है या जवाब देने के लिए विवश हो जाता है। लेकिन बाबा क्या करते थे, और वही दादियां करती थी, बाबा के सामने भी हमने देखा और दादियों के साथ भी इतने 35-40 वर्षों में देखा, क्या देखा, किसी से भी कोई गलती कभी भी एकदम उसे डांटेंगे नहीं, उसे भुला करके पहले उसकी मानसिक स्थिति ना ऊंच लाएंगे। हर व्यक्ति को अपनी प्रेज अच्छी लगती है, अपना स्वमान होता है, उसका सम्मान वो अच्छा लगता है, तो उसको कहेंगे बाबा, दादियों का भी ये देखा, देखो तुमने वो सेवा की बहुत अच्छी, उससे यज्ञ को ये लाभ हुआ, इससे तुम्हारा ये नाम हुआ, तुम्हारे अंदर ये कला है, ये गुण है, इसके आधार पर तुमने जो सेवा की कितनी उससे सफलता मिली। तो पहले उसके पॉजिटिव गुण कह करके उसका मेंटल लेवल ऐसा ले आएंगे जो स्वीकार करने के उसमें हो, और उसके बाद फिर अगर थोड़ी भी बताएंगे लेकिन अभी देखो कल ये बात हुई या परसों या तुम्हारे द्वारा, इससे देखो ये, तो वो इससे पहले आप बोलो वो खुद अपने को स्वीकार कर लेगा, हाँ बाबा, हाँ दादी जी, हाँ भाई साहब, हाँ बहन जी, कुछ भी कि ये गलती हुई, आई एम वेरी सॉरी, कुछ भी आगे से नहीं होगी अब तुरंत, क्यों, क्योंकि उसका मेंटल लेवल पहले प्रेस करके उसे उस लेवल में लिया है। शिव बाबा भी तो यही करता है, अव्यक्त बाप दादा की मुरली होती है ना, बाबा कोई बात सुनाने से पहले कितनी महिमा करता है, तुम यही हो, याद नहीं तुम्हें, कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हो, कल्प पहले भी ये विजय प्राप्त करी थी, अभी भी कर रहे हो, विजय तो निश्चित ही है तुम्हारी, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कह के फिर बाबा जो बात होती है उसमें भी कई बार बाबा कहते हैं, बाबा कहे क्यों दादी, बाबा कहे, कई बार बाबा पूछते हैं ना, तो देखो बाबा का तो पूरा अधिकार है कहने का, फिर भी बच्चों का सम्मान रखने के लिए, तो उससे क्या होता है कि बाबा हमें लगता है बाबा मेरा है। बस एक ये हम वो करें मन जीतने के लिए, क्योंकि अपना ही मन नहीं जीता, दूसरों का भी मन जीता, मन जीते जगत जीत, तभी है सबका मन जीतना है। इसलिए एक तो ये तो बैलेंस जो रहेगा हर चीज में, बैलेंस उन दो चीजों का है जो बिल्कुल अपोजिट है, लव लॉ, एक निवृत्ति एक प्रवृत्ति बाबा ने कहा, फिर अरे का अलर्ट एंड रिलैक्स, बिजी एंड इजी, एक है डिटैच्ड एंड इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट भी रहे कर्म में हमारा, वो कहा है ना जो उसके लिए क्या कहा है कर्म, गीता में जैसे कहा है कर्मण्य वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका भाव क्या है, मतलब ये नहीं है जो मतलब दुनिया समझते कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो, ये तो होगा ही नहीं। कर्म हम बाद में करते हैं, फल पहले माइंड में होता है। आप यहां पर आए हो भट्टी कर रहे हो, लेकिन जब से भट्टी का पता चला होगा तब से ये फल माइंड में है, हम भट्टी करेंगे हमारी अवस्था ऊंची होगी, याद का चार्ट बढ़ेगा और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, फल तो माइंड में है ना, फल की इच्छा ना करो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका भाव ये है कि जब हम कर्म करें फुल इन्वॉल्वमेंट हो, यानी पूरा मन वचन कर्म संबंध सबसे हमारा दिल और दिमाग उस काम में लग जाए, तो जब कर्म करें हमारा फुल इन्वॉल्वमेंट रहे और जब फल आए तो इमोशनल डिटैचमेंट, भावनात्मक रीति से हम डिटैच्ड हो जाएं, चलो मैंने अपना पूरा काम किया, अब जो जैसा भी भाग्य में होगा मिलेगा, बाद में भाग्य आता है पहले नहीं। पहले ये नहीं कि अगर कल पहले पुरुषार्थ किया होगा तो करेंगे, ये नहीं, कर्म करते वक्त फुल इन्वॉल्वमेंट पूरा और रिजल्ट के वक्त इमोशनल डिटैचमेंट, तो उससे क्या होगा, अगर फल हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं भी आया है तो हम एकदम निराश और बिल्कुल डिप्रेस नहीं होंगे, क्यों, इमोशनली भावनात्मक रीति से हमने अपने को डिटैच कर लिया। लेकिन वैसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि कर्म करते वक्त हमारा फुल इन्वॉल्वमेंट रहा, तो इसलिए सफलता तो उसमें होनी होनी है। अगर फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसी कारण हमारी हार होती है, हार होने का और कोई कारण नहीं, हमारा इन्वॉल्वमेंट हमारा पुरुषार्थ पूरा 100% नहीं रहा, दिल और दिमाग पूरा उसमें पुरुषार्थ में नहीं जुटे। जबकि बाबा का ऐसा था, जब से बाबा को यह ज्ञान हुआ तब से बाबा पूरी तरह 100% उसमें लग गया। इस रीति से एक तो प्रवृत्ति में निवृत्ति जो बाबा ने कहा ना, और देखो बाबा यही चाहता है, प्रवृत्ति वालों को बाबा क्या कहता है, भले प्रवृत्ति में रहो लेकिन मानसिक रीति से यही सोचो, मेरी प्रवृत्ति बाबा के साथ है, मैं और मेरा बाबा, जिसे बाबा ने कहा ना आज किस शब्दों में बोला, मियां बीवी बोला ना, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा, तो मियां वो शिव बाबा, हाँ बाबा ने कहा ना हम सब बीवी, अर्थात भाव क्या है, बहुत अंतर है, वो निराकार हम साकार, तो जहां बहुत अंतर होता है तो क्या है, थोड़ा उसे चलना पड़ता है थोड़ा ये चलते हैं और कॉमन प्लेस पर वहां पर मीटिंग हो जाती है, ये नियम है। कहीं पर भी किसी भी चीज का होता है तो कोई दो देशों के बीच में झगड़े हो न्यूट्रल तीसरे देश में उनका मीटिंग कर लेते हैं, कोई भी बात होती है, तो इसी तरह बाबा है निराकार हम साकार, तो इसलिए बाबा ने कहा चलो तुम थोड़ा चलो, चल के क्या बन जाओ, आकारी, मैं निराकार हूं मैं भी थोड़ा चल के आकारी बन जाता हूं, दोनों आकारी का मिलन आकारी वतन में ये सहज हो जाएगा। तो देखो गिव एंड टेक, लाइफ में भी ये प्रिंसिपल होना चाहिए, और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति ने दो सिद्धांत खास दिए हैं, कौन से, जो हमारे सबके जीवन के लिए है, एक तो है जियो और जीने दो, बस होता क्या है, हम सब दुनिया को अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं, सास बहू को, बाप बेटा को, भाई भाई को, बिजनेस पार्टनर, सब भाई जैसा मैं कहता हूँ वो सही है। ये मन के अंदर जो भावना रहती है ना, ये हमें सबका दिल नहीं जीतने देती, मन जीतने नहीं देती। दूसरा, हमारी पोजीशन को ख्याल करके हमारी बात मान भी ले, लेकिन दिल से उसके मन में हमारे रिस्पेक्ट नहीं होगी। दिल जीत करके अगर हम अपनी बात रखते हैं और वो मानता है, फिर उसमें सदा सफलता होती है। तो जियो और जीने दो, ये सिद्धांत हमारा जो है ना, ये सभ्य समाज का सिद्धांत है। और नहीं तो दूसरा ये जो बात है, इसकी जगह आज संसार में क्या हो गया है, जी और जीनो दो की बजाय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो शक्तिशाली है उसे ही जीने का अधिकार है, ये सिद्धांत हो गया जो वेस्टर्न कंट्रीज का। ये जंगल रूल है, जंगल में बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा लेगा, उससे बड़ा जानवर अपने से छोटे को, तो जो बड़ा है फिटेस्ट उसको ही सर्वाइव करने का हुक्म है। अब ये जंगल रूल है, कलयुग भी कांटों का जंगल बना हुआ है ना, इसलिए कलयुग में भी ये सिद्धांत जैसे आते जा रहे हैं, लेकिन सभ्य समाज का नियम है जियो और जीने। इससे क्या होगा, मन जीते जगत जीत, हम दूसरों के प्रिय हो जाएंगे, दूसरे हमें प्रिय लगने लगेंगे। क्यों? और इसीलिए बाबा ने वो 3 सर्टिफिकेट की बात कही है ना, हर बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने, आज भी बाबा ने कहा ना, इन चीजों से हम खुद भी राजी और प्रवृत्ति भी राजी और बाप दादा भी राजी, तीनों, स्वयं मन, हम स्वयं भी संतुष्ट, परिवार भी संतुष्ट माने लौकिक अलौकिक और कोई भी हो, और साथ में बाबा भी संतुष्ट। 3 सर्टिफिकेट याद है ना सबको, कौन को ये जो 3 सर्टिफिकेट, इसके लिए क्या करना है, एक शब्द में तीनों के लिए, एक एक शब्द, एक लाइन बस, भगवान का प्रिय बनने के लिए क्या करना है, सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या है? बाबा ने तो बहुत स्लोगन दिए, एक स्लोगन को याद करो, उसी में इसका जवाब आ जाता है। आज बाबा राजी बोला ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो बस हमें भगवान से सर्टिफिकेट अगर लेना है तो सिर्फ सच्चा और साफ, एक ये रखना है, अंदर बाहर एक जैसे, एक बाबा ने ये जो बताया हुआ है। और इसीलिए ये केवल स्थूल की बात नहीं है, ये सच्चाई और सफाई ये अंदर की भी, मन की भी बात इसमें विशेष है। क्योंकि जब मन में अगर कहीं पर सफाई नहीं होगी, कहीं पर कोई प्रकार के किसी के लिए घृणा, ईर्ष्या, आवेश कुछ भी होगा, तो क्या होगा, मन दूषित हो गया। और जहां पर भी मन गंदी जगह पर, लौकिक दुनिया में भी क्या होते हैं कि जो आत्माएं भटकती रहती हैं वो कहाँ रहती हैं, अशुद्ध आत्माएं जिन्हें शरीर नहीं मिलता, कोई अकाले मृत्यु हो गई या किसी कारण से शरीर नहीं मिलता, कहाँ भटकती रहती हैं, गंदी जगह, या उनका वास जो कहते हैं शमशान घाट में होता है, अशुद्ध जगह उनका वास होता है। तो इसीलिए अभी चूंकि ये खेल भी बहुत होना है, बहुत अकाले मृत्यु होनी है, समूह मृत्यु होनी है भटकती हुई आत्माओं का, तो हम ये ख्याल रखें कि बाहर की सफाई के साथ साथ अंदर की सफाई हो। क्योंकि अगर अंदर की सफाई नहीं होगी तो वो आत्माएं अपनी अतृप्त इच्छाओं को हमारे शरीर के माध्यम से तृप्त करेंगे, क्योंकि वो तो अतृप्त आत्माएं हैं और गंदा स्थान ढूंढ रहे हैं जहां पर कि वो जा सकते हैं, शुद्ध स्थान में तो उन्हें जाने का हुक्म ही नहीं है, जाएंगी नहीं। तो जहां पर भी उन्हें अशुद्ध मन मिलेगा, अशुद्ध प्रवृत्ति मिलेगी, अशुद्ध बात मिलेगी, वहां जाके वो बस। और तभी लोग कहते हैं, अरे इसकी बुद्धि को क्या हो गया, इतने साल तक ज्ञान में चलते रहे, अब ये कैसे हो गया, आदि आदि बहुत। इसीलिए हम बाहर की सफाई के साथ, भले प्रवृत्ति में रहे, बाहर की सफाई के साथ ये अंदर की सफाई, मन की सफाई, और इससे एक तो ये मन जीतते रहेंगे। तो एक तो ये बात हुई, कौन सी, जिसके ऊपर बात चल रही थी, सच्चे एक सर्टिफिकेट। दूसरा, अपने मन का अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, मन जीतने के लिए सबसे पहले अपना कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए है? इसके विपरीत ये सत्यो कि हम कब असंतुष्ट होते हैं, कब हम ज्ञानी आत्माएं हैं, ज्ञान सब बुद्धि में है, फिर भी अपने से कब नफरत आती है, घृणा आती है, कब अपने से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और बहुत लगता है, क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि में है, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर के हमारे कर्मेंद्रियों से कोई बात हो जाए, हमारे मन के द्वारा कोई मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, हमारी बुद्धि के द्वारा कोई ऐसी बातें सोच ली जाए, हमारे पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर कोई भी ऐसा अगर कार्य हो जाता है, तो मनुष्य को अपने से ही जैसे घृणा नफरत और वो आती है, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन किया, बुद्धि में है ये नहीं होना चाहिए। जैसे क्रोध आता है, एकदम क्रोध आ गया, उस समय तो आवेश है, बुद्धि वशीभूत है, लेकिन जब थोड़ा शांत होते हैं तब ख्याल होता है, अरे ये तो नहीं करना था, इससे कितना वो हुआ, खुद भी अपने अंदर भी व्यर्थ। और बाद में जब रियलाइजेशन ज्ञान के आधार पर होता है, फिर भले माफी भी मांग ले, लेकिन जो लॉस होना था वो तो हो गया ना। इसीलिए बाबा कहता है कि ये जो है अपने से सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या हो, कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो। सीता ने भी मर्यादा का उल्लंघन किया, लकीर लक्ष्मण रेखा का, तो रावण ले गया। ऐसे ही हमारा मन भी जब जो बाबा की बताई हुई मर्यादाएं पहले मन उल्लंघन करता है, फिर वो बात वाणी में आती है, फिर कर्म में भी आ जाती है, फिर वो संस्कार बन जाता है। तो इसीलिए मर्यादा का उल्लंघन ना हो, तो ये मन जीतने के लिए ये आवश्यक। और तीसरी बात, परिवार का सर्टिफिकेट, लौकिक हो अलौकिक हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, पड़ोसी हो, ऑफिस वाले हो, बिजनेस वाले हो, सारे लोग, सबके लिए एक ही सिद्धांत लागू है। उनका दिल जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी बात, लौकिक दुनिया में भी ना, किनसे हमारी मित्रता होती है, किनसे होती है, हैं? फीलिंग्स, अच्छा, व्यवहारिक स्तर पर, और हैं? मतलब एक मोटी बात है, रिस्पेक्ट। हम जिसको भी सम्मान देंगे वो हमारा हो जाएगा। बड़ों को तो सम्मान देते हैं, समान वालों को, छोटों को, सबको, हर एक का सम्मान का लेवल अलग अलग है। बड़ों का सम्मान है उनको, मतलब बड़ों से प्यार का प्रतीक है उनको सम्मान देना, छोटों के प्यार का प्रतीक है उनको क्षमा करना, गलती करेंगे कोई उनकी बात, छोटे और बराबर वाले हैं, क्षमा करना। तो अब ये है कि सबको हम सम्मान देते चले, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा, हाँ, हमने देखा एक बार मधुबन में छुट्टियों में गए हुए थे, दोपहर का समय था, ब्रह्मा भोजन आदि कर करा के सब आराम करने जा रहे थे, हम तब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, दोपहर को आराम का उतना आदत नहीं था, तो हम बाहर थे, तभी देखा कुछ सन्यासी चार पांच, उनमें भी एक मुख्य सन्यासी, वो गेट के बाहर जा रहे हैं, बाहर पहरा होता था भूरी दादी, तो उनको कहा कि हमें आपके बाबा से मिलना है। तो उसने कहा कि भाई बाबा अभी तो दोपहर का 3 बजा हुआ है, 3:30, आप 1 घंटे बाद आओ, बाबा उठ जाएंगे थोड़ा आराम से, अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें अभी मिलना है, उनसे शास्त्रार्थ करना है। वो कहते हैं आपके यहाँ ये ज्ञान दिया जाता है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया, आदि आदि सारी शास्त्रों की बात, हम उसके लिए आए। तो बहुत उसे समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें अभी मिलके ही जाना है। खैर, बहन अंदर गए बाबा के पास, तो देखा बाबा थोड़ा खटखट किया, बाबा ने जग गए, हाँ बच्ची बोलो, कि बाबा बाहर ऐसे सन्यासी आए हैं, कह रहे हैं अभी मिलना है। तो बाबा ने कहा हाँ हाँ, बाबा आता है, बैठा उन्हें और बाबा आता है। तो ये जो हिस्ट्री हॉल है तो इसमें बैठा दिया, चार पांच लोग थे वो, और थोड़ी देर के बाद बाबा आए। देखो अपने आराम का भी त्याग, बाबा ने कहा है ना जब कभी सेवा हो आराम का भी वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद बाबा आए और बाबा ने देखा नीचे बैठे हुए हैं, तीन संदली होती थी, एक बाबा की एक मम्मा की, बीच की संदली खाली रहती थी, बच्चे आते थे जब पार्टियां आती थी वहां बैठ के अपना सुनाया करते थे अनुभव, और जाने से एक दिन पहले सुनाते थे हम क्या पुरुषार्थ की रूपरेखा लेके जा रहे हैं, अब हम ये पुरुषार्थ करेंगे, जो भी जाने से पहले जो ले करके जा रहे हैं वो बात। तो सन्यासी लोग तो सामने बैठ गए, उनका नियम होता है अगर किसी आश्रम में जाएं तो आश्रम की जो गद्दी होती है वो वहां के सन्यासी की होती है, अब वो सामने बैठ गए। बाबा आए, बाबा ने देखा हालचाल पूछा, फिर कह रहे बच्चे तुम यहाँ नीचे क्यों बैठे हो, आओ ऊपर बैठो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो आपकी गद्दी है, आप बैठो हम नीचे बैठे। बाबा ने कहा देखो बच्चे तुम सन्यासी हो, बाल ब्रह्मचारी हो, तुम लोगों ने इसको संसार को थामा है, ये बाबा तो गृहस्थी है, प्रवृत्ति वाला था, और इसीलिए तुम लोगों ने इतना कार्य किया है भारत को थामा है, आओ ऊपर बैठो। नहीं नहीं वो तो आपका गद्दी है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे आओ, बड़े प्यार से एक सन्यासी था है मुख्य जो, उसको बाबा ने वहां से पकड़ के थोड़ा उठाया बैठा दिया, बाबा सामने बैठ गया। अब देखो बाबा ने थोड़ा रिस्पेक्ट सम्मान उन्हें दिया, इतना भर करके आए थे, उसके बाद एकदम शीतल। फिर बाबा ने हालचाल के बाद पूछा हाँ बच्चे कैसे आना हुआ, बस वो सन्यासी उसकी तरफ देखे, वो उसकी तरफ देखे, तुम बोलो वो उसकी तरफ, क्योंकि इतना उन्हें सम्मान मिला शीतल हो गए। फिर बड़े सन्यासी ने कहा भाई हमने सुना है, ऑटोमेटिकली बाबा बाबा मुंह से निकलने लगा, हमने सुना है यहाँ ज्ञान शास्त्रों के विपरीत दिया जाता है आदि आदि बोला। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे ये तो खुद ही गीता पाठी था, बहुत शास्त्र किए, बहुत गुरु किए सारा, लेकिन जब परमात्मा नहीं मिला, अब तो वो शिव बाबा आता है, वो इसके द्वारा कह के चला जाता है, और देखो इतना पढ़ा जिंदगी भर की, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं गीता में, लेकिन क्या हमारे में से गई वो वासनाएं। तो आदि आदि बाबा ने जो समझाया, बस एकदम एक बार में ही समझ गए, कर चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन बाबा ने सम्मान देके जैसे उनको मेंटल लेवल को एक्सेप्टेबल लेवल में ले आया। बस बाबा यही चाहता है भले, इसीलिए बाबा कहता है सत्यता हो, लेकिन सत्यता के साथ साथ सभ्यता भी हो। इसीलिए ये ज्ञान हमारा सत्य है, लेकिन इतने प्रेम से बताएं, इतने प्यार से बताएं कि बस। और ये तब होगा जब हमें बाबा से शक्ति मिलती रहेगी, और जैसा आज बाबा ने कहा ना, बाबा निराकार से आकारी बनता है, आप साकारी से आकारी बनो, उसके बाद मिलन होगा। लेकिन कमी कहाँ रह जाती है, कहाँ रह जाती है, ड्रेस में। जैसा बता रहे थे ना भाई, जहाँ भी जाना है वैसी ड्रेस पहन के जाते हैं, तो वहाँ बाबा ने कौन सी ड्रेस बताई, हाँ ये आकारी फरिश्ते वाली ड्रेस, चमकीली ड्रेस। और जितने जब इस ड्रेस में जाएंगे तो बस फिर मिलन होगा। लेकिन है क्या चमकीली ड्रेस, ये है देखो ये साकारी है, इसके अंदर हम निराकारी आत्मा ये तो बोल देते हैं, लेकिन साथ में हम ये भूल जाते हैं इसके अंदर आकारी भी है। वो कह देते हैं इतना मनोमय भोजन और भोजन का शरीर है, ये है वो है, पांच छह शरीर दुनिया वाले बताते हैं, लेकिन आकारी शरीर जो है ना, बस उसके साथ जैसे ही हम आत्माएं जब आकार के आधार पर ही तो योग में अपने को अनुभव करके परम धाम तक सूक्ष्म वतन तक ले जाते हैं अलग अलग। तो इसीलिए वो चमकीली ड्रेस है, लेकिन है क्या उस पे जो विकारों की कमजोरियों की जो धूल पड़ गई है ना, सोना भी है हीरा चमक रहा है, लेकिन अगर धूल वूल पड़ी है तो क्या उस वक्त चमक नहीं दिखेगी, धूल हटाने की जरूरत है, चमकाने की उसे जरूरत है। तो बस हाँ यही हम बच्चों में कमी है। और भक्ति मार्ग में भी हम दूसरे को कहते रहे, हम अपने अंदर की कमी हमें कम दिखती है दूसरों, इसीलिए हम मन जीते जगत जीत नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि हम ब्लेम गेम, दूसरों को कोई भी गलती होती है दूसरों को दोषी करते, भाई इसने ऐसा कहा तो मुझे क्रोध आ गया, इसने ये किया तो मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प चलने लगे, उसने किया लेकिन हम अपने को नहीं देखा है। हा? बड़ा अच्छा इसके लिए कहा है, सुना होगा आपने कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। सामने आईना होता है ना, तो होता क्या है, कमी हमारी होती है लेकिन हम दूसरे की कमी है ये समझ के आईना साफ कर रहे हैं। शायद आईने पर धूल है लेकिन होता है हमारे चेहरे पर धूल होगा, आईना जितना भी साफ हो वही दिखाएगा जैसे हम हैं। तो आवश्यकता ये अपनी धूल कम करने की, अपनी अपने को साफ करने की। इसीलिए मन को, मन जीते जगत जीत जो कहा है, सबसे पहले हम अपने को देखते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है हमारे समाज में ना, बचपन से ही हमारे अंदर एक संस्कार डाल दिया जाता है, कौन सा, जाने अनजाने कि तुम सही हो दूसरा गलत है। बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, थोड़ा चलना सीखा, ठीक है, खुश हो रहे हैं माँ बाप, खड़ा हुआ और सीख रहा, बस खड़ा होके थोड़ा गिरेगा तो फिर खड़ा होगा, ऐसे सीखता है, हर एक की है प्रैक्टिस। लेकिन चलते चलते मानो तेज चल रहा है, दीवार से टकरा गया या धरती से टकरा गया, रोने लगा तो माँ क्या करेगी? यहाँ आप सब बैठे हो ना, क्या करोगे? ऐसा करके जैसे धरती का दोष है दूसरे का दोष है तेरा दोष नहीं, और बच्चा भी बस देखा खुश हो गया, चुप हो गया, फिर खुश होके चलने लगता है। तो बचपन से ये जो संस्कार हमारे अंदर आ जाता है कि मैं सही हूँ दूसरा गलत है, बस इसके आधार पर ही हमारा सारा जीवन चलता रहता है। और इसी को ही दुनिया में कह देते हैं भाई, जब दूसरे पर उंगली रखो तो क्या कर, एक उंगली इशारा करती है कि ये तीन उंगलियां आपकी तरफ, पहले अपने को तीन गुना देखो तब दूसरे को बताओ तुम्हारी ये गलती है। तो भाव क्या है कहने का कि मन जीतने में हमें यही तकलीफ होती है। क्यों? हम कोई भी चीज का ब्लेम जो है दूसरे पर रख देते हैं, उसने ऐसा करा ये करा इस कारण से ऐसा हुआ, उसने तो किया लेकिन करने वाले की बात नहीं है, रिएक्शन कैसा। एक ही स्थिति होती है, एक काम हुआ, चार लोग हैं, अब उन चारों का रिएक्शन अलग अलग होगा, एक को क्रोध आएगा, एक शांति से देख लेगा, एक जगह छोड़कर चला जाएगा क्रोध। तो ये उसके कारण नहीं हुआ बल्कि मेरा रिएक्शन कैसा है उसके आधार पर ही हमारे व्यर्थ संकल्प या कोई भी जो बातें होती हैं वो चलती है। इसीलिए एक ये देखना है कि किस रीति से हमें अपने को आगे बढ़ना है। ये जो बाबा ने इसीलिए कहा, उस ड्रेस को हमेशा चमकाए रखो, और चमकाए तब रहेंगे जो उस पर हमारी कमजोरियों की, कोई भी स्थूल चीज भी होती है धूल होती है ना, रोज धूल निकालते रहेंगे तो चमकती रहेगी। बहुत दिनों की धूल अगर हो जाएगी, कई बार जम जाती है वो निकालने में भी फिर स्क्रैच पड़ जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए आवश्यकता ये है कि कोई भी जो बात है ना कमी कमजोरी की, वो बाबा कहता चमकीली ड्रेस पहन के मुझसे मिलते रहो, और उससे क्या होगा, जितनी चमकीली ड्रेस होगी ना मिलते रहेंगे। तो बाबा ने कहा संसार में प्रॉब्लम तो आएंगी, भंवर, आज बाबा ने भंवर शब्द भी यूज किया है ना, जीवन का भंवर। और जब ये हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें मनुष्य फंस जाता है, कहीं भी पानी में भी भंवर बन जाता है ना जब, तो क्या होता है, बड़ा खतरनाक हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन हम डूबे नहीं, हम तैरते रहें, पार हो जाएं। इसके लिए क्या, उसमें भी कहानी आती है ना रामचंद्र जी की, हाँ, जब एक बार क्या हुआ कि रामचंद्र जी की कहानी में ये आता है, नदी पार कर रहे थे, वनवास हुआ केवट था पार करा तो रामचंद्र जी को हुआ अब मैं क्या करूं, वनवास आ गए, पैसा वैसा तो था नहीं कुछ, तो उन्होंने क्या करा, अंगूठी वगैरह अपनी उतार करके केवट को देनी चाहिए। तो केवट ने कहा नहीं महाराज मैं आपसे नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये संसार का नियम है कि एक ही ट्रेड के जो दो आदमी होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे से पैसा नहीं लेते। भाई डॉक्टर होगा कोई डॉक्टर को दिखाने जाएगा वो उससे पैसा नहीं लेगा, जो कोई अगर अलग होगा नाई होगा दूसरे के पास जाएगा वो उससे पैसा नहीं लेगा। तो उसने कहा हम दोनों एक ही ट्रेड के हैं महाराज, रामचंद्र जी आप भी वो हो। तो रामचंद्र जी ने कहा भाई मैं तो कोई नाव वाव चलाता नहीं मैं कैसे उस ट्रेड का धंधे का हूँ महाराज, मैं तो ये नदी पार कराता हूँ और आप भवसागर पार करा देते हो, तो दोनों का धंधा तो एक ही हुआ ना, तो इसलिए मैं आपसे वो नहीं ले सकता। बस इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम सब जो भी ब्राह्मण बच्चे है ना ये जितने भी हैं हमारा एक दूसरे से व्यवहार बिल्कुल निस्वार्थ, जहां पर भी कोई भी स्वार्थ की भावना आ जाती है ना वहां आत्मिक प्रेम नहीं बना रहता। इसीलिए आत्मा को भी कई विचारकों ने बोला है, बहुत सोल को किसी ने बोल दिया SOUL सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, आत्मा प्रेम स्वरूप है, कोई भी बात है, लेकिन मेन बात यह हम सब जो हम सभी का धंधा एक ही है, बाबा ने जो धंधा दिया है, जब एक दूसरे का सब धंधा है तो हमारा सबसे एक दूसरे से पूरा निस्वार्थ व्यवहार, बस इससे ही हम एक दूसरे का दिल जीत सकेंगे और यज्ञ का दिल, बड़ों का दिल, छोटों का दिल, और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उस बात को चरितार्थ कर सकेंगे। एक ये बाबा ने कहा, और साथ में क्या है, मन, इसका ये तो जीतने के मेथड्स कुछ हुए, और एक और भी है, जैसे पहले सुनाया ना चेहरे पर धूल थी और आईना साफ करते रहे, ऐसे ही एक अमीर खुसरो करके बहुत बड़े दार्शनिक होकर गए हैं, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा कहा है प्रेम के बारे में, भक्ति की बात, कि खुसरो दरिया प्रेम का, ये संसार जो है ना ये दरिया प्रेम का है, उल्टी जाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, और दरिया को पार करने के लिए क्या करना होता है, कब तैरते हैं, तैरना भी उसका एक अंग है, तो जो तैरा वो डूब गया और जो डूबा वो पार, मतलब उल्टी बात, ये जो संसार है खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी जाकी धार, जो तैरा वो डूब गया और जो डूबा वो पार हो गया, ये संसार, ये प्रेम, ईश्वर से प्रेम जो है, जो ईश्वर के प्रेम में डूब गया वो तो पार हो गया, और जो अपना पुरुषार्थ करता रहा तैरता रहा वो डूब गया इसके ऊपर। तो भाव क्या है इसका, कि एक बाबा, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, अल्टीमेटली व्यक्ति जितना जितना इस पर आता है कि बस हर जगह बाबा ने हम सबको एक ब्रह्मास्त्र दिया है, पुराने जमाने में अस्त्र बहुत होते थे लेकिन एक ब्रह्मास्त्र होता था जो कभी फेल नहीं होता था, सुना है ना, और वो एक ही बार यूज हो सकता था, उसमें तो एक बोलते हैं, लेकिन बाबा का ब्रह्मास्त्र तो हम एक दिन में जितनी बार यूज करें वो कभी भी फेल नहीं होता। कौन सा ब्रह्मास्त्र है वो, है मन मना भाव, वो तो है ही है। और देखो जब कोई बहुत विकट परिस्थिति आए ना, बाबा के वो तीन चार लाइन के महावाक्य है वो याद करो, और वो शब्द, बाबा मेरे साथी, मेरे बाबा आओ, बाबा इस परिस्थिति में से मुझे पार करो, कोई भी विकट, हमने तो पचासों बार इसे यूज किया है, चाहे स्थूल परिस्थिति हो चाहे सूक्ष्म, और बाबा किसी ना किसी रीति से किसी को निमित्त बना के, किसी की बुद्धि को टच करके उस कार्य से मैं सफलता दिला देता है, पार कर देता है, लेकिन साथी का आवाहन करना जरूरी है। हमें होता क्या है ऐसी परिस्थिति में, क्या होता है, लौकिक वाले याद आ जाते हैं, कोई संबंधी जो ये कर सकता है, और बस फिर बाबा साक्षी हो जाते हैं। ये वर्ड खास मेरे साथी, मेरे बाबा, मीठे बाबा आओ, इस परिस्थिति से मुझे पार करो, बाबा बस मुझे इससे निकालो। कोई भी विकट से विकट परिस्थिति हो, आप जब जितना जीतते जाएंगे हम ना, उतना कॉन्फिडेंस अपने पर आता जाएगा और उतना हम सफलता की तरफ हर कार्य में सफल होते जाएंगे। लेकिन इसमें आवश्यकता यह है, अपने दम पर हम कई बार कई परिस्थितियों को पार नहीं कर पाते हैं। तो आवाहन करो, और आवाहन करके आप देखोगे तुरंत उस परिस्थिति से पार हो जाएंगे। और मन जीतते जाते हैं हम जितना, हर एक चीज का कुछ मेजरमेंट तो होना चाहिए ना, मापदंड। मानो मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, उसका मापदंड है थर्मामीटर, देखा हाँ भाई 100, 101, 102 फीवर है भाई, तबीयत खराब है भाई, नॉर्मल लाने के लिए दवाई वगैरह खा ली, तबीयत है डाउन, शरीर गिरा गिरा लग रहा है, ब्लड प्रेशर नापा, थोड़ा हाई है या लो है, जो भी पता चल, तो कोई चीज का मेजरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, सुबह आ गए, क्लास कर लिया, योग कर लिया, आके बैठ तो गए, लेकिन मेजरमेंट क्या है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। रोज अपना इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, बहने आते हैं ना सेंटर का अकाउंट जो होते हैं, तो उनका ऑडिट होता है ना, तो पता चलता है, और अकॉर्डिंगली उसके अंदर कोई कमी वगैरह होती है बताई जाती है। तो ऐसे ही अपना ऑडिट जरूर करना है, स्पिरिचुअल ऑडिट, कि मैं जो चल रहा हूँ कोलू के बैल की तरह तो नहीं, कि बहुत सारा सोचा, बहुत पुरुषार्थ हो गया, लेकिन वहीं के वहीं है, जितना बढ़ना चाहिए उतना हमारी उन्नति नहीं हुई है। तो उसका हमने देखा बाबा का, बाबा क्या करता था, अब गौर से सुनना है। एक तो आप सबने सुना है सूक्ष्म वतन में लाइट वाला प्रजा ब्रह्मा बाबा, तो उसका भी राज गुलजार दादी जब बहुत छोटे थे 9-10 साल के ज्ञान में तब खुला, तब उन्होंने देख करके बताया, और बाबा को तब पता चला कि यहाँ पर जो ये ब्रह्मा बाबा है इसी का संपूर्ण रूप वहाँ है। तो समय प्रति समय बाबा जब संदेशी जाती थी कहता था देख के आओ और अब बताओ कि उसमें और मुझ में कितना फर्क है। और उसमें जब संदेशी जाते, बाबा शकल सूरत सब कुछ वैसे ही है, लेकिन वहां पर उसका तेज बहुत है, लाइट ज्यादा है, आपका उतना नहीं है। और जितना जितना बाबा कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तो अंत में वो बस बहने कहते थे कि बाबा आपको भी देखते हैं वहां, और आप बिल्कुल वैसे ही लगते हो जैसे कि ऊपर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा। तो अपने को भी हम संपूर्ण रूप अपना रखें सामने कि बस सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, और जो आत्मा के गुण बाबा ने बताए हैं उनसे चेक करते चले। और ये कैसे पता चला, बाबा से जब हम लोग मिलते थे ना, तो बाबा से जब भी मिलते थे, बाबा आओ बच्चे, जो बाहर चित्र भी लगाए ना, ये प्रैक्टिकल में होता था, बाबा यहाँ होते थे, कई बार टहल रहे होते थे, आया कोई बच्चे, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, बस ऐसा हम लोग चुंबक की तरह खींचते हुए बाबा की बाह में आ जाते थे, वन वे, बस जैसे ही बाबा के बाह में आए विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, कुछ समय के लिए बिल्कुल अशरीरी हो जाते, फिर बाबा आओ, हाँ ऐसे थोड़ा थपथपा, आओ बच्चे आओ, हाँ जैसे बाबा फिर से हमें देह में लाने का पुरुषार्थ करता था। कोई देह से अलग आत्मा नहीं होती है, लेकिन अनुभूति ऐसी होती थी विदेही, इतना बाबा में शक्ति ट्रांसफर करने का वो था। उसके बाद फिर बाबा हालचाल पूछता था, टोली खिलाता था, फिर एक जाता था दूसरा आता था, दूसरे को हर एक को ये अनुभव होता था, क्यों, थोड़े समय के लिए जैसे हमने बाबा की शक्ति के अनुभव से अपने को विदेही कर लिया, जैसे मानो ये है रुमाल, हर चीज पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, छोड़ देंगे नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर हम किसी शक्ति से थोड़ा सा इसे यूं करेंगे तो जब तक ये शक्ति है तब तक ये ऊपर जाएगा, और जब इसकी शक्ति खत्म हो गई फिर से ये नीचे आने लगेगा। तो ऐसे ही जैसे बाबा में इतनी शक्ति, क्योंकि बाबा ने वो पुरुषार्थ किया था जो आप सबने सुना भी है, पहला कौन सा पुरुषार्थ, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है, बेटा बेटी पत्नी, इन्हीं जगह तो व्यक्ति की बुद्धि जाती है, पति की तरफ पत्नी की तरफ बच्चों की तरफ, तो बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया था मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा ये आत्मा ये। हम अपने से पूछें, अपना ऑडिट करें, क्या मैंने ये पुरुषार्थ किया है? अगर अभी भी मेरी बुद्धि बच्चे की तरफ जाती है, पति की तरफ जाती है, या पत्नी की तरफ, कहीं भी, मैंने ये पक्का किया है, चाहे भले लिखने का हो, चाहे अपने अंदर स्मरण का हो, चाहे उससे डिटैच होने के भाव से हो, लेकिन पुरुषार्थ करा है, तो अंतरात्मा से जवाब आएगी उतना पुरुषार्थ नहीं किया तो अभी भी मेरी बुद्धि जाती है। और बाबा का यही था, पक्का किया था, और जैसे ही बाबा के टच में आए, और कई बार बाद में तो बाबा अंतिम में एक दो साल तो ना भाई ऐसे गोदी नहीं देते थे, मिलते नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर बोलते थे कोई इन्फेक्शन वगैरह ना, बाबा की उम्र भी काफी 93 हो गई थी, तो इसीलिए बाबा मिलते थे, लेकिन इतना जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ती थी विदेही हो जाता। क्यों? क्योंकि बाबा ने अपने को वो किया था। और अंत में हम तो आसाम में पोस्टेड थे इंजीनियरिंग करने के बाद, बस 17 तारीख को यहाँ पहुंच गए थे, 17 जनवरी 1969, और 17 और 18 जनवरी को हमने कई बार बाबा से मिले, और पहले तो जब भी मिलते थे बाबा हालचाल पूछता था, हाँ बच्चे क्या, हम अपने दिल की बात बताते थे, बाबा सेवा में ये है, पुरुषार्थ में ये है, बाबा उसका समाधान देता था। लेकिन अंत में मन जीते जगत जीत का कितना बढ़िया उदाहरण देखा, करीब एक बार नहीं दो दिन में 6-7 बार बाबा के सम्मुख जाते थे, ये पूछेंगे ये पूछेंगे, मन में ही है, बाबा ने दृष्टि दी, थोड़ा दृष्टि दे करके बस बाबा, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, मतलब हमें एक अक्षर भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और बाबा तुरंत मन की बात प्रश्न भी बता देता था, उसका समाधान भी दे देता था। ये है मन जीते जगत जीत का उदाहरण। क्यों? और ये कौन कर सकता है? जिसने अपने मन के संकल्पों को जीता होगा वो दूसरे के संकल्प को भी तुरंत पढ़ सकता है। नहीं तो कोई व्यक्ति आया, उसके मन में जो संकल्प है उसका पढ़ने के लिए हम अपने संकल्पों को भी मिक्स कर देते हैं, हमारी जैसे उसकी प्रति धारणा है वो मिक्स हो जाएगी और हम वैसा सोचेंगे, लेकिन अपना कोई इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी इच्छा न हो जो बाबा ने कहा है, तो दूसरे के संकल्पों को हम तुरंत पढ़ के उसका समाधान कर सकेंगे। एक इसका ये प्रतीक देखा बाबा का अंतिम दिन 17-18 जनवरी को। दूसरी बात, उन्हीं दो दिन में ना बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला, बिल्कुल लास्ट बाबा, ऐसा लगता था जैसे फरिश्ते की तरह बाबा चला आ रहा है, लाइट वो था देखने में साधारण जैसे हम आप सब हैं, लेकिन तेजोमय इतना था बाबा। और वैसे बाबा को कई बार खांसी आती थी, उम्र थी, ठंडी का मौसम होता था, तो जब खांसी आती थी यानी परिस्थिति स्वस्थिति पर प्रभाव डालती थी, खांसी जो है परिस्थिति है, और वो बाबा क्या करता था, आप अभी भी जाओ वहां पर ट्रांसलाइट का चित्र लक्ष्मी नारायण का कृष्ण का रखा हुआ है, तो जब खांसी आती थी कई बार आंख भी गीली जैसे हो जाती थी, बाबा क्या, देखो बच्चे अभी तो ये पुराना शरीर है, बीमारी है, ये है, प्रकृति अपना प्रभाव दिखा रही है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा मिशनु कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी, कोई भी व्याधि नहीं होगी, कितना खुशी होगी। और बाबा बस स्वस्थिति को इतना मजबूत करता था कि तुरंत ही परिस्थिति पर थोड़ी देर में ही जरा देर में विजय प्राप्त हो जाती थी, और बस उसके बाद बाबा बताता, बच्चे ऐसे कोई भी परिस्थिति आए सदा खुश रहो, है खुशी में क्या करना चाहिए, खग्गिया मारनी चाहिए, मालूम है ना, ऐसे है बाबा करके भी दिखाता था। तो भाव क्या है कहने का, कि स्वस्थिति हमारी अभी क्या है, अभी परिस्थिति शक्तिशाली है, हमारी स्वस्थिति कमजोर है। शमशान घाट पर गए, परिस्थिति शक्तिशाली है, वैराग आ गया, तो वो तो परिस्थिति का प्रभाव पड़ा इसलिए वैराग आया, बाहर आए फिर वैसे के वैसे। लेकिन होना क्या चाहिए, स्वस्थिति हमारी इतनी शक्तिशाली हो कि परिस्थिति को बदल दे। और ये आवश्यकता है, बाबा वही करा। मैंने बताया ना कि बाबा के सम्मुख गए कि जितनी बार गए बाबा ने मन के भाव को, स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली कि दूसरा जो भी प्रश्न लेके आया उसका प्रश्न भी बता दिया, समाधान भी बता दिया। ऐसे 18 जनवरी को हम अंतिम मुरली सुन रहे थे हिस्ट्री हॉल में, बाबा मुरली चला रहे थे। देखो रोज मुरली यहाँ पर होती है लगभग 8:45 बजे, एक नियम है 8:45 साकार के टाइम से ही चला आ रहा है ये। लेकिन उस दिन बाबा को कुछ ये ख्याल होगा, क्योंकि संपूर्ण कर्मातीत अवस्था बन गई थी कि भाई उतने तक तो रहना नहीं है, चलो पहले क्लास करा दें। तो बाबा ने जमुना प्रसाद भाई को बुला के कहा, भाई सबको बोलो आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा। एक घंटा रखा रहता था, उसे अनाउंसमेंट किया और सब आ गए। बाबा ने उसमें जल्दी आके 7:30 बजे क्लास कराया। बस हम भी सामने बैठे हुए थे, मुरली सुनते सुनते हमारे मन में विचार आया कि बाबा कुछ मेरे लिए बोले। भाई हर एक के मन में होता है कि बाबा पुरुषार्थ की बात, अभी भी अव्यक्त बाप दादा आते हैं, सबको होता है क्या ही अच्छा हो मुझे स्टेज पर जाने को मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए। तो मेरे मन में सिंपली विचार आया, संकल्प, और वो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त आत्मा थी ब्रह्मा बाबा। तुरंत संकल्प उन तक पहुंचा होगा, दूसरे ही क्षण बाबा ने नाम लेकर के कई महावाक्य उच्चार दिए। बस देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत अच्छा है, मीठा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, आदि आदि। और मेन बात क्या है कि दूसरे अंत में हम बच्चों के सामने भी बाबा ने कहा, अनेका अनेक आत्माएं आएंगी इच्छाएं लेकर के। मानो किसी को दुर्गा का इच्छा है साक्षात्कार करने की, किसी को गणेश का, किसी को हनुमान का, हम तो वही हैं, एक ही हैं। लेकिन उन बाबा हमारे द्वारा उनकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, कब, जब ये तन और मन हमने पवित्र रखा हुआ होगा, बाबा को समर्पित होगा, तो हमारे इस तन मन के द्वारा बाबा दूसरों को। और बाबा ने कहा ऐसा हो कि वो आत्माएं आए, रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई चले, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। और इस रीति से ये कब होगा, उसका रूप परिवर्तन कब होगा, जब हमारा ज्वालामुखी स्वरूप होगा। क्योंकि अग्नि का ये गुण है कि अग्नि में जो चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा अगर ज्वाला स्वरूप का गुण होगा तो अनेक आत्माएं जो भी इच्छाएं लेकर के आएंगी, अपनी इच्छा की तृप्ति का अनुभव करके खुश आनंद शक्ति का अनुभव करते हुए चली जाएगी। ये देखा। और सबसे बड़ी बात तो ये देखी कि बाबा 18 जनवरी को आए मुरली चला के, बस उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। और वो इस बात का प्रतीक है, क्योंकि ये संसार पुरुष और प्रकृति का खेल है, प्रकृति से बना ये शरीर और पुरुष माने आत्मा, पुरुष प्रकृति का खेल है। और जैसी इस पुरुष की स्थिति होती है वैसे ही प्रकृति चलती है। पुरुष आत्मा का ड्राइवर है, हम कहते हैं ना, ड्राइवर अटेंटिव होगा तो कार भी अच्छी। तो ड्राइवर आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त की हुई होगी तो ये शरीर प्रकृति भी वैसे चलेगी। और ये देखा उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। पूरी मुरली सुनो टेप या कैसेट अभी भी मिलती है, सीडी मिलती है 18 जनवरी 1969 की। देखो एक बार भी खांसी नहीं आई, वो इस बात का प्रतीक है कि स्वस्थिति ने परिस्थिति के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय पा ली थी। लेकिन वंडर तो तब देखा इसके बाद, बाबा दे अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग करके बाबा गए। और बाबा ने ये कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, जो टेप में भरे हुए हैं शब्द, पहले बाबा ने कभी नहीं कहा। लेकिन जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है ना, तो उसे भान हो जाता है। और बाबा को भी उस दिन भान हो गया कि बस ये मेरा अंतिम मिलन है बच्चों के साथ, साकार मिलन, और बस अब मैं अंतिम मिलन के बाद बस आत्मा चली जाएगी। तो हम बच्चों को भी इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी ये इच्छा मृत्यु का वरदान हो, हमें भी ऐसी स्थिति बनानी है, तभी तो अंत मते सो गति होगी। अभी हमें हमारी ये नहीं है सडनली ये प्राकृतिक आपदा आई, अर्थक्वेक आया ना नेपाल में, ऐसे ही अर्थक्वेक आया, ये छतगिरी मानो, और उससे अगर मैंने शरीर छोड़ा तो ये तो दुर्गति हो जाएगी। अंत मते सो गति कहाँ होगी, चारों तरफ त्राही त्राही मची होगी, खून होगा चारों तरफ, वो तो जैसा वातावरण होगा उसमें तो सदगति नहीं होगी। इसीलिए बाबा ने कहा है जो मेरे बच्चे होंगे ना, वो उनका क्या होगा, ये वायरलेस कनेक्शन वाली सब चीज फेल हो जाएंगी, लेकिन वही बच्चे जिनका वॉइसलेस कनेक्शन होगा, उनके पैर ऑटोमेटिकली वहां बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। चाहे जितनी भी सुनामी आई हो, फ्लड आया हो, अर्थक्वेक हो, लेकिन बच्चों के पैर अगर वॉइसलेस कनेक्शन होगा ऑटोमेटिकली, हम सबने सुना है कच्छ भुज में भी आया था, लाटूर वहां पर लाटूर में भी आया था, बहुत यहाँ तो पत्रों के भंडार उन सब चीजों के भरे पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे भी पैर वहां बढ़े जहां सेफ्टी हो, वो तभी होगा जब हमारा वॉइसलेस कनेक्शन हो। समय पूरा हो गया है, और अधिक मैं बता के केवल एक बात अंतिम बताऊंगा बाबा की, कि बाबा ने शरीर छोड़ा उसी दिन 18 जनवरी की रात को, लेकिन संस्कार बाबा का किया गया 18 की रात को शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन रखा रहा, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद यहाँ शांति स्थल जाए वहां संस्कार बाबा का किया गया। तो इतने लगभग 60-65 घंटे के बाद, लेकिन न बाबा को कोई इंजेक्शन दिया गया था, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया था, बर्फ जरूर थी, लेकिन अक्सर करके जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है। लेकिन बाबा को हम लोगों ने जब 21 तारीख को स्नान वगैरह कराया, बाबा के शरीर में काफी हद तक वो फ्लेक्सिबिलिटी थी, चेहरा चमकता हुआ, नहीं तो शरीर काला पड़ जाता है, दुर्गंध आने लगती है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैसा ही चमकता चेहरा लगता था। अब फिर बाबा हमेशा की तरह खड़ा होके कहेगा आओ बच्चे आओ, और इस ये है प्रकृति जीत का प्रतीक, मन जीतेगा, जिसका मन जीता होगा उसका प्रकृति से बना ये शरीर भी उसने जीत लिया होगा, और ये बाबा का प्रत्यक्ष देखा, मन जीते जगत जीत, और ये जगत के अंदर तो प्रकृति भी आ गई, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश ये चारों चीज। तो इसलिए ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि ये तन, और इसमें एक बात ये कि हम सब जानते हैं भारत के अंदर प्राकृतिक आपदा बहुत आनी है, मानो अर्थक्वेक आएगा तो धरती, लेकिन धरती को हम अपना मित्र बना लें तो ये धरती कभी भी हमारे प्राण लेने के निमित्त नहीं बनेगी। तो धरती मित्र कैसे बनेगी, मित्रता उनमें होती है जो समान संस्कार के होते हैं। तो धरती का सबसे बड़ा संस्कार है दाता का, देने का, धरती से सब चीज मिलती है। ऐसे ही हम भी अगर दाता बन के हमारे सम्मुख जो आए वो खाली हाथ न जाए, कोई स्थूल चीज की बात नहीं है, प्रेम सद्भावना आदर सहयोग जो भी है सूक्ष्म चीजें, उनका हम सदा दान करते चले, धरती की तरह दाता बन जाएंगे तो धरती को मित्र बना लिया, और समय पर ये धरती जहां भी बात आई हमारी प्राणों की रक्षा करेगी। ये धरती का विशेष गुण, बहुत गुण है लेकिन सहनशीलता आदि आदि जो है वो गुण धारण, लेकिन एक गुण का यहाँ सिर्फ वर्णन कर रहे हैं अर्थक्वेक से, कि उसके कारण हमारे प्राण ना निकले। ऐसी जल का सबसे बड़ा गुण क्या है, शीतलता के साथ फ्लेक्सिबिलिटी एडजस्टमेंट। जल को जिसमें लो, गिलास में लो गिलास का रूप ले लेता है, थाली में लो थाली का रूप, कटोरी में लो कटोरी, ऐसे ही हमारे संस्कार ऐसा हम हर एक से एडजस्ट होके चल सके। हम कहते हैं इसके साथ तो एडजस्ट होके चलना मुश्किल है, इसके साथ आसान है। नहीं, सबके साथ एडजस्ट, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे नम्र संस्कार हो हर एक के साथ, तो जल जो है हमारी मृत्यु का दुख कारण नहीं बनेगा, हमारे दुख अशांति का कारण नहीं बनेगा। साथ ही शीतलता आदि सब है। ऐसी वायु का क्या गुण है? हल्कापन। वायु हर चीज को ऊपर ले जाती। ऐसी कोई भी परिस्थिति हो हम कभी भारी ना, कभी परिस्थितियों के हार से हार करके भारी हो जाते हैं, बोलने का खाने का दिल नहीं करता, मूड ऑफ हो जाता है। नहीं, बाबा ने कहा सदा हल्के रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ये वायु का गुण है। तो जितने साइक्लोन चलेंगे, जितने भी वो होंगे, वो साइक्लोन के कारण हमारा कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि वायु को हमने अपना मित्र बना लिया। हर एक तत्व के आप पांच पांच सात सात गुण लिखने का प्रयास करना, ये होमवर्क है। और उनको धारण कर करके आप करेंगे, प्रकृति जीत इतनी सहजता से बन जाएंगे जैसे ब्रह्मा बाबा बन गए। बिल्कुल सब आभास हो गया और बाबा ने जब शरीर छोड़ा, बस सबको टाटा करके अच्छा बाबा जा रहा है, विदा लेता है। ऐसी आकाश का गुण कौन सा है? विशालता। और उस विशालता के कारण आकाश में सैटेलाइट छोड़ते हैं और वो सैटेलाइट के द्वारा क्या होता है? कम्युनिकेशन, मोबाइल है, टेलीफोन है, टीवी है, सब कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम हो जाएं, हमारे अंदर ये इतनी विशालता हो, किसी की कमी कमजोरी को हम अपने हृदय में स्थान न दें। हर एक से हमारा कम्युनिकेशन हो। होता क्या है, जिनसे हमारे संबंध अच्छे होते हैं, क्लास के बाद भी घंटे भर बैठ जाएंगे, बात करते रहेंगे, और जिनसे संबंध उतने अच्छे नहीं होंगे, सामने भी आएगा उससे दृष्टि नहीं मिलाएंगे, बात नहीं करेंगे। नहीं, इतनी विशालता हो किसी के कोई से भी हमारा संबंध में कटुता ना हो। वो आकाश का गुण धारण कर लिया तो आकाश मार्ग से आने वाले जितने बम होंगे, बरसात होगी, कोई लैंडस्लाइड होती है, क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटना आदि, वो कोई भी हमारा नुकसान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आकाश को हमने अपना मित्र बना लिया। इसी तरह पांचवा सूर्य है, सूर्य यानी अग्नि, उसको मित्र बना लिया। तो जैसे बताया कि अग्नि का मुख्य गुण क्या है? रूप परिवर्तन करना। ऐसे ही इसका अगर ये गुण धारण कर लिया, ज्वालामुखी स्वरूप धारण करके, तो हर आत्मा को उसका मन चाही इच्छा दिला सकेंगे। जो भी आत्मा आएगी खाली हाथ नहीं जाएगी, भरपूर होके जाएगी। तो इस रीति से बाबा की तरह हम मन जीते, प्रकृति जीत बन करके ना, यही बाबा की इच्छा है हम बच्चों से, और ये करके ही हम बस जाएंगे। तो बाबा हाथ फैलाए हमारे स्वागत के लिए खड़ा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सॉरी थोड़ा समय ले लिया, लेकिन मेरे ख्याल में भूख तो सबको नहीं लग रही होगी इतना, लेकिन आपस के आत्मा की भूख होती है ना। चलिए दो मिनट कुछ अनाउंसमेंट करना, आइए।
ओम शांति। सब सुनने में मग्न हो गए थे इसीलिए शायद बुक याद नहीं आई होगी, क्योंकि ऐसा मौका कहाँ बार बार मिलेगा। सभी ने मोहन भाई को बड़े ध्यान से सुना, अभी न सिर्फ सुनना है लेकिन जो कहा वो करके भी दिखाएंगे। बहुत अच्छी तरह से दिल से क्लास कराई है। हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं।